ओम शांति। देखो आज बाबा ने बहुत अच्छी दो बातें सुनाई। एक बाबा ने कहा, बच्चे देह की दुनिया में रहते हुए भी, ये दुनिया कौन सी? देह की दुनिया, देहधारियों की दुनिया है। हर कदम में, हर सेकंड देह और देहधारी दिखाई देंगे और देह में ही रहते, शरीर में ही रहते। और किसी को देखो, किसी से पूछ लो, कुछ भी सुनो भी, देहधारियों की बातें हैं। ऐसी दुनिया में, तो उसमें भी घोर कलयुग है, ऐसी दुनिया में भी रहते बाबा कहते हैं देह को भूलो। क्यों कहा? कि बाबा ने कहा अब वापस जाने का समय आया है। जिसके बुद्धि में ये अच्छी तरह से समझ में आया, जैसे बच्चे पढ़ने का समय है, कल परीक्षा है, माँ बाप कहेंगे बच्चों को पढ़ो पढ़ो, क्यों कह रहे हैं? सारा साल नहीं कहते, परीक्षा है कल, तो कल पास होना चाहिए, तो माँ बाप को चिंता है, तो बच्चों को बार बार एक ही कहेंगे। तो ये भी हमारा माँ बाप है, बच्चों को क्यों कहता है? बाप का लक्ष्य है बच्चों को सदा सुख और शांति देनी है। कलयुग में अशांति है, दुख है, चिल्लाते हैं, बताते हैं, बोलते हैं, बीमारी है, तो अपने आप तो नहीं, चमत्कार तो नहीं होगा, बिना कुछ किए हुए तो कुछ नहीं मिलेगा। तब बाबा जानता है कलयुग दुनिया है और सारे कलप के लिए नहीं कहता है, ये कलप का अंतिम समय है और थोड़े समय के बाद परिवर्तन होने वाला है और वापस जाने का समय है। ऐसे समय पर कहता है देह को भूलो। फिर उसमें भी बाबा ने आज कहा अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। तो सवेरे से रात तक अगर आप देख लो दिनचर्या में, सवेरे योग करते हैं, ज्ञान सुनने वालों को बाबा ने बताया, दुनिया वालों को तो नहीं बताया। बाप ने कहा मैं बच्चों को पढ़ाता हूं, जो बच्चे समझते उनको पढ़ाता हूं, तो उनको कहा, जैसे स्कूल में टीचर स्टूडेंट को पढ़ाते, दुनिया वालों को नहीं पढ़ाते, जो सामने बैठे। तो बाबा कहते बच्चे देह में रहते हुए भी सवेरे सवेरे उठते योग में बैठते हो। तो बाबा ने कहा अपने समान में, स्वरूप में स्थित हो जाओ। एक एक सारे दिन की विधि बताता है, सवेरे बैठते ही आत्मचिंतन करो, 15 मिनट आधा घंटा बैठते हो और इधर उधर का चिंतन न कर। क्यों? देह का चिंतन, देहधारियों के विचार न आए। अब उसमें भी एक व्यवस्था देखा गया, अगर आप बैठ करके आत्मचिंतन, ज्ञान का और कुछ चिंतन करेंगे, चिंतन शब्द करने से बुद्धि खाली है, तो बुद्धिगण, जो आज बाबा ने कहा राम और रावण की बात बताई है ना, रावण राम से अलग करता है ना, तो ये कहां से आए राम, माया ये कहां से आई? बुद्धि के अंदर बहुत देहधारी की इधर उधर की बातें याद है, तो जरूर मन अकेला अगर चलता है तो बुद्धि के अंदर और इधर उधर की बातें याद आती है, उसको हमने माया रावण शब्द देते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। तो कम से कम आधा घंटा अगर आप बैठते सवेरे, तो इसकी एक विधि चाहिए, क्या करें? अगर योग में सवेरे स्वरूप में स्थित होना चाहिए, अपने स्वधर्म में स्थित हो जाओ। कैसे हो जाएंगे कौन बताएगा? सुनते तो है, तो कैसे होंगे? उसकी विधि है, बैठते ये दोनों मन और बुद्धि दो शक्ति है, एक ही भारत देश है, देख लो, कभी भी एक हाथ से नमस्ते नहीं करता है, दो हाथ जोड़ते हैं, ये भौतिक हो गया। आत्मा को भी दो हाथ है, आज भी बाबा ने कहा बुद्धि कहां है? आत्मा में। मन कहां है? है ना, आत्मा माना मन बुद्धि संस्कार, ये मन बुद्धि को एक करना चाहिए, एकाग्रता। तो कैसे होगा ये? दो हाथ जोड़ने को नमस्ते कहा, कैसे होगा ये? कैसे जोड़े? विधि है। तो बैठते आत्मचिंतन में, कौन, मेरा रूप, मेरे गुण, मेरे कर्म, आत्मा का चिंतन पूछते हो बार बार, बुद्धि जवाब देती है। ये अगर आप आधा घंटा तक करते हो, इससे आत्मा के परी दूसरे कोई विचार नहीं आए, उसको कहते हैं स्वधर्म में स्थित होना, स्वरूप में स्थित होना। और इसको ही कहते हैं, इसके कारण शरीर शरीर का कोई विचार नहीं आया, मैं शरीर नहीं हूं, ब्रकुटे में बैठा, ये नहीं आया मैं कौन शुरू हो गया, है ना। तो न मन में आया न बुद्धि में शरीर का बात नहीं आई। तो इस स्वरूप में अगर सवेरे सवेरे रहते हो, एक काम। दूसरा, इसके बाद ज्ञान सुनते हैं, ज्ञान बहुत सुन लिया, तो ज्ञान सुनने के बाद हमारे पास ज्ञान का एक शब्द अच्छा महावाक्य नोट करना चाहिए। सुनने से नहीं होगा, कितना भी पढ़ो सुनते हैं, बाहर आते ही भूल गए। तो वो अगर आपके पास रखते हो, नाश्ता कर रहे हो, सारा दिन कर्म करो, लेकिन मन को क्या करता है, उसके अंदर चिंतन चाहिए मन के अंदर, इसको कर्म योग कहा। कैसे, ये अगर ये नहीं करते हो आप, जरूर देह दिखाई देता है, देहधारी के विचार आएंगे ही, हम देह के दुनिया में रहते हैं, सूक्ष्मतन परम धाम में नहीं रहते हैं। बाबा सूक्ष्मतन में रहता है, बाप दादा परम धाम में शिव बाबा रहता है, उनको शरीर दिखाई नहीं देता है। तो बाबा कहता है अपने स्थिति जैसे बच्चों की स्थिति हो, तो यह संभव नहीं है। तो हमें इस दुनिया में रहते हुए कैसे करना चाहिए, तो हमें अपनी अवस्था व्यवस्था करनी पड़ेगी ना। तो कर्म तो करना पड़ेगा, आंखें बंद करके नहीं जाएंगे। इसलिए साधु सन्यासी ने क्या किया, संसार छोड़ के जंगल में गए, कोई दिखाई देना नहीं चाहिए, देखेगा तो विचार आएगा। किसने कहा, सूरदास ने अपने आंखें तोड़ लिया, शरीरदारी को देखना नहीं। तो ये सब भक्ति है, हट है। तो यहाँ शरीर में रहते हुए शरीरधारियों को देखते हुए, शरीरधारियों के संबंध संपर्क में आते हुए, शरीर के साथ कर्म करते हुए भी क्या हम शरीर शरीरधारी के विचारों से अलग रह सकते हैं, प्रश्न यहाँ आया। ऐसे कहो ये करो, बाबा ने भी कहा मैं भी वही कहूं, फायदा क्या है। अब उसका निवारण है, क्या ये संभव है? हाँ। कैसे संभव है? जो सवेरे मुरली सुनी, तो वो मुरली अगर आपके बुद्धि में अगर एक दो शब्द रखते हो, एक्चुअली बुद्धि तमो प्रधान हो गई है, याद नहीं रहता, बाकी सारी बातें याद रहती है। गलत बातें जो देखते हो सुनते हो वो अच्छी तरह से याद रहती है, तो ये निशानी हमारी। तो इसलिए कहा कि एक दो शब्द लिख के रखना चाहिए, बार बार पढ़ना चाहिए। क्यों? अगर ये ज्ञान का चिंतन चलता है तो दूसरे विचार अपने आप, कोई भी मन में गलत विचार करना नहीं चाहता है। हम कहते गलत विचार नहीं करो, कोई करना चाहते हो क्या? आता है, अंदर भरा हुआ है। गलत विचार न करो, देहधारी के लिए नहीं सोचो, और कोई सोचता नहीं बैठ करके, आता ही रहता है, दिखाई देता है, अंदर भरा हुआ है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब अभी अच्छे विचार भरना पड़ेगा, वो बाबा देता है। फिर उसके बाद सिर्फ अपने अंदर लिख के रखने, अपने आप को पढ़ने से भी नहीं चलेगा। जब भी किसी के संबंध संपर्क में आते हो, एक दूसरों को जरूर बताना चाहिए, दान करना चाहिए। देखो आज सारे दिन में आपको किसी ने भी ज्ञान के पॉइंट सुनाया, तब कहेंगे कि सच्चा मित्र कौन है। संगति संग दोषक, आज बाबा ने कहा ये सत्संग है, यहां पढ़ाई है, यहां इस सत्संग से ही सदगति, माना आपके जो सदगति होनी चाहिए, अच्छे कर्म होना चाहिए, तो अपने आप तो नहीं होंगे। दृष्टि बोल कर्म विचार अपने आप अच्छे हो संभव है, क्योंकि हम कितने अच्छे गलत कर्म करके आए हैं, दुर्गति में पहुंचे हैं। अपने आप ज्ञान सुनने से नहीं होगा, सत्संग में बैठने से भी नहीं होगा, सुनने के बाद भी दो मिनट के बाद भूल जाते हैं। तो उसके उपाय चाहिए, निवारण चाहिए। ऐसे वातावरण में रहते हुए भी, ऐसे संग में रहते हुए भी हमें होकर के इसको बार बार पूछना पड़ेगा, भाई जी आज देखो बाबा ने ये कहा था। वो नहीं सुनाएगा, कोई नहीं सुनाएगा आपको। देख लो आप साक्षी हो के, आज सारे दिन में किसी ने किसी को भी आज के मुरली के पॉइंट सुनाया, मिले एक बात किया सारा दिन में, तो संग किसको कहते हैं, है ना? किसको आप दोस्त बना संग में? खुदा दोस्त कहते हैं, भगवान को अपना दोस्त बनाओ, कैसे बनाएंगे? तो पहले जो यहां आपके साथ संबंध संपर्क में जो भी मिलता है, कर्म करो, कर्म सन्यासी नहीं, मिलो बात करो। अगर कोई इधर उधर की बात करता है, ध्यान देना चाहिए कि हमारी अवस्था, अगर देहधारी के विचार कोई सुनाता है, तब समझना चाहिए ये मित्र है कि दुश्मन है। भगवान, आज बाबा ने कहा राम और रावण, रावण क्या करता है? राम से अलग करता है। माया क्या करती है? माया और कोई नहीं, रावण कोई नहीं है। अगर आप इनसे मिलो, ये क्या सुनाता है आपको सारा दिन में, इसकी बात उसकी बात समझना, इनसे बच के रहना, यही माया है, यही रावण है और कोई नहीं, दूसरा दस सिर वाला कोई नहीं है। तो अगर अपनी अवस्था ऐसे बनाना चाहते हो तो देखना पड़ता है कि ये दुनिया की बात इसकी बात उसकी बात पर चिंतन इधर उधर करता है तो हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर रहा है। समझ रहा है, किचड़े का डब्बा है, इसके अंदर सब डालो। अगर कोई आपको जब भी मिले ज्ञान की बात करता, कल ये सुना था, आज ये सुना था, आज व्हाट्सएप पे देख लो, कोई खराब नहीं कोई चीज, टीवी भी देख लो, बाबा ने देखो बच्चों को टीवी के लिए पीस ऑफ माइंड दिया है, टीवी देखो नहीं ऐसा नहीं कहा, सन्यासी नहीं हम सब छोड़ के बैठ जाओ, ये नहीं करो ये नहीं करो, संभव नहीं है। टीवी भी देख लो, टीवी में क्या देख लो, अगर आपके पास व्हाट्सएप है देख लो, नहीं ऐसा नहीं, उसको यूज नहीं करो मोबाइल, नहीं चलते फिरते खाना खाते हो क्या? हाँ बच्चे खाते हैं, छोटे बच्चे सारा दिन खाते रहेंगे चलते फिरते भी। अब हम समझदार है, खाने का समय स्थान अलग है, मोबाइल यूज करना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए, व्हाट्सएप पर भी क्या देखना चाहिए, हमारा लक्ष्य अलग है। आप मधुबन में क्यों आए हो, और किधर जाते थे? दुनिया और भी किधर किधर सेवा करते, सारे विश्व में करते है, यहां क्यों आए हो, ये कौन सा स्थान है? तब बाबा ने आज कहा ये सत्संग है, ये भक्ति नहीं है, यहां सिर्फ कर्म नहीं है, दुनिया में भी बहुत लोग दान जप तप पूजा पाठ क्या क्या दान करते हैं, सेवा करने वाले बहुत है। आप जाओ गुरुद्वारे में जाओ और कहां जाओ, देखो खाना खिलाना है, लाखों सारे दिन में खाना खिलाते हैं। हम कहीं गुजरात में गया, एक एक देखा, कोई भी आने दो, सारे दिन में खाना बनाना खाना खिलाना यही धर्म है, जिसको लंगर कहते हैं, यही सेवा समझते हैं। तो यहां वो नहीं, अगर माता इधर आई रोटी बनाए सब्जी घर में भी करते थे आप, और यहां क्या कर रहे हो, यहां भी सवेरे सब्जी काटी रोटी बनाई घर में भी करते थे यहां भी करते थे, दोनों में कोई अंतर है? क्या अंतर है? हाँ यहां आपको पूछना, तब कहा भाग्य बनाने के लिए आए हो, भाग्य विधाता का घर है ये। हमें याद है शुरू शुरू में हम जब आए, दादी जी ने कहा चार भाइयों को अपने साथ खाने के लिए बुलाया, थोड़े से थे एकदम शुरू में, तो दादी ने खाने के लिए बुलाया, अपने साथ खाना खा लो। दादी ने कहा आप लोग यहाँ क्यों आए हो, इतने पढ़े लिखे भाई यहाँ क्यों आए हो, ये जंगल यहाँ कुछ भी नहीं, उस समय 50-100 लोग ही थे और खाना भी इधर ही बनता था, शांति स्तंभ के सामने खाते थे, कुछ भी नहीं था, तो यहाँ क्यों आए हो? तो किसी ने कहा दादी सेवा करने ले, अरे यहां क्या सेवा करेंगे, कोई लोग ही नहीं है क्या सेवा करेंगे, सेवा तो बाहर सेंटरों में है। फिर हमको पूछा भाई दादी सेवा तो सब जगह होते हैं, हम सेवा करने नहीं आए, तपस्या पहाड़ों पर किया जाता है, बाबा यहां क्यों आया? तपस्या, इसको मधुबन को तपस्वी भूमि कहते हैं, तपस्या करने के लिए एकांत शांत वातावरण चाहिए, है ना? तो ये तपस्वी भूमि है, तपस्या सेंटरों में बाहर देखो सारा दिन सवेरे से शाम तक सेवा है। आप देखो सेंटर में योग नहीं होता, सवेरे आप मुरली क्लास के लिए आए मुरली सुनी गए, शाम को आए मुरली सुनी, मुरली के पहले 15 मिनट गीत बजता रहता है। मधुबन जैसे 4 बजे उठ करके एक जगह पर संगठित में योग होता है, कहीं मुरली सुनी सेवा करेंगे सवेरे से रात तक। तब कहा मधुबन में तपस्वी भूमि है, तपस्या यहां है, सारे कल्प का आधार है ये, यहां दो ही काम है, तीसरा सेवा, एक ज्ञान योग सेवा, तीसरा कुछ भी नहीं। अब देखना चाहिए मेरे मन में सारे दिन में आज की मुरली आज के आज कितनी रही, मेरे दिल यहां आने के बाद भी संसार दुनिया की बातें अगर चलती यहां आके फायदा क्या हुआ, भाग्य क्या बनाया? मेरे मुख से बात करनी चाहिए, सन्यासी नहीं हम, किसी से बात की क्या बात किया, मुख से क्या निकला, मुख कमल अपने आप बन जाएगा, अपने आप बनेगा मुख कमल, ये मुख से क्या क्या गलत शब्द निकलते थे, ये मुख की भाषा कब परिवर्तन होगी, अपने आप नहीं, चमत्कार तो नहीं है कोई। तो अभी मेरे मुख से इधर उधर के एक भी गलत शब्द निकलना नहीं, जानते हो बहुत कुछ देखा भी है, तो भी मुख से वर्णन नहीं, उससे भी सूक्ष्म में जाओ तो उसके मन में चिंतन नहीं आए, तब कहेंगे सारे कल्प का अपना भाग्य बना रहे हो। देखो स्कूल में भी बच्चे जाते हैं, कॉलेज में भी जाते हैं, कई बच्चे खेलने के लिए जाते हैं, कई बच्चे इधर उधर घूमेंगे, लाइब्रेरी में जाएंगे, कैंटीन में जाएंगे, कई बच्चे हैं नंबर वन आके पढ़ाई, पढ़ाई से बाहर भी नहीं देंगे, सूरी पढ़ाई, थोड़ा समय भी मिला होमवर्क करते रहेंगे। तब कहा नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री। आज बाबा ने कहा यहां भी नंबर वार पुरुषार्थ, राजा भी चाहिए, प्रजा भी चाहिए, दास दासी भी चाहिए, नहीं ऐसे नहीं, सभी एक जैसे नहीं होंगे। तो अपने आप को पूछ लो मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है। हाँ ये ऐसे करते वो ऐसे करते, बाबा ने कभी भी कहा एक दूसरों को देखो नहीं, हर एक का अपना लक्ष्य है। इसलिए वरदान में सुनाया बाबा ने आज संबंध संपर्क में आते हुए भी एक शब्द बताया, कौन बताएगा? संबंध संपर्क में आते हुए भी एक चीज चाहिए, और बताओ माताएं बताओ, बहुत सुना तो याद है, किस नशे में हो सारा दिन में? क्या बाबा की याद? बाबा की याद वो क्या है? हाँ क्या सेवा तो कर रहे हो, घर में भी करते थे, बाबा की याद क्या है वो? आज जो बाबा ने कहा वो याद है? बताओ माताओं में से कोई बताओ। आज बाबा ने कहा कि किसी के संबंध संपर्क में आते हो तो एक बात की धारणा चाहिए, क्या है वो? हाँ बाबा ने कहा वरदान में संबंध संपर्क में आते हो तो हमारी एक आदत बनी, किसी के संबंध संपर्क में आओ, किसी को देखो, अरे ये ऐसा है, ये ऐसा है, वही कंप्लेंट करेंगे ना, तो वो आपके अनुसार चलेगा क्या? आपको जैसे चाहे दूसरों के चाल चलन बोल कर्म ऐसे होंगे, उसके अपने बोल चाल चलन होंगे ना, कि मेरे अनुसार चाहिए। तब कहा दूसरों के संबंध संपर्क में आते देखते सुनते ये उसका कर्म है, ये उसका जीवन है, ये उसका लक्ष्य है, वो उसकी धारणा है, उससे संतुष्ट रहो। सुनो ये बहुत अच्छी बात, अगर सोचेंगे बाबा के मुरली से एक एक ले लो, हमको तो हम अकेले नहीं रहते जंगल में, बहुत लोगों के साथ संबंध संपर्क में आना पड़ता है। अगर आप भाई किसी के साथ सेवा करते हो तो दूसरा कोई पूछेंगे आपको तो क्या बताएंगे, अरे वो ऐसे बोलते हैं, वो ऐसे करते हैं, ये ऐसे, उनकी कभी महिमा करते कोई, उनकी कमी ही वर्णन करेंगे। माना क्यों हम चाहते हो जो हम जैसे चाहते हैं वैसे उनके जीवन होना चाहिए, उनके बोल उनके कर्म उनके व्यवहार होना चाहिए, संभव है? सोच लो, इसको कहते ज्ञान। हम यहां अपने को परिवर्तन करने आए हैं तो बाबा सिखाता है, पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब, सिर्फ सुनने से नहीं है, है ना? तो एक एक शब्द थे धारणा के एक लेना चाहिए, किसी के संबंध संपर्क में आओ, देखो उनकी अपनी चाल अपने बोल अपने कर्म, उसका जीवन का लक्ष्य अलग है, उसके जीवन के लक्ष्य के अनुसार उसके बोल होंगे, उसके कर्म भी होंगे, उसकी चाल चलन भी होंगी, कि जैसे मैं चाहूं वैसे उनकी बोल उसके कर्म चलन होंगे। इसको कहा एक दूसरों को समझना। दुनिया में मैनेजमेंट पढ़ाते हैं कॉलेजों में भी, यहां भी बाबा वही पढ़ाता है, बाबा के राजा बनना चाहिए, उसके लिए पढ़ाई है ये, प्रजा की पढ़ाई नहीं, राजयोग सिखाता है कि कल बच्चों को बाबा राजा ही देना चाहता है, औरों को देखते ही उनके संबंध उनके बोल, किसी को कैसे बैठने की इच्छा है, किसी को कैसे बैठने का आराम लगता है, हर एक की अपनी धारणा है। इसको कहा ड्रामा का ज्ञान, हमने ड्रामा कह दिया उसको बाबा ने, ड्रामा में हरेक का अपना अपना पार्ट है, अब हरेक का अपने अपने चाल चलन बोध जीवन का लक्ष्य है, लेकिन ये हमें ज्ञान ड्रामा कहते हैं हम, लेकिन हम अपने जीवन से उसको अपने आप को नहीं समझाते हैं, अरे इसके बोल इसके कर्म, तब अगर ये जिसके बुद्धि में अगर अच्छी समझ में आया, कभी भी वो किसी की निंदा ग्लानी पर चिंतन, इसको बाबा कहता है सद्गुरु का निंदक ठोरने पाता है ना? सद्गुरु सद्गुरु के बच्चे हैं, भगवान के बच्चे हैं, सभी एक जैसे नहीं बनेंगे। हर एक की चाल बोल राजा के अलग, प्रजा के अलग, दास दासी के अपने चाल होंगे ना। लेकिन हम चाहते हैं, अज्ञानी की निशानी है ये, ड्रामा को समझा नहीं अभी तक, उनके शब्द ऐसे निकलते हैं। तब बाबा ने कहा, संबंध संपर्क में आते हुए संतुष्टता चाहिए। किसमें संतुष्टता, ये सोचने की बात है। औरों को देखो, समझो, हाँ उसकी अपनी चलन, उसकी अपनी बोल, मुझे क्या लेना है, मैं उसको जैसे चाहे वैसे चला सकता हूं, किसी के पास पावर है, उसी को ड्रामा कहा। ये समझ के चलो, ड्रामा में हरेक का अपना पार्ट, तब हमारे मन में किसी को देखते ही दे दे धारियों की ये क्यों, ये क्या, ये कैसा, ये विचार नहीं आते हैं। उसको बाबा ने कहा व्यर्थ, व्यर्थ विकल्प। तो उनके प्रति गलत भावनाएं, कहते शुभ भावना दे दो। शुभ भावना कैसे निकलेंगी, तो शुभ भावना तब निकलती है, इसको शास्त्र गीता में भी कहा, अधम ते अधम महापापी है, बहुत खराब व्यक्ति भी है, तो मेरा धर्म क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, दया क्षमा का, दया क्षमा कैसे करेंगे, हाँ वो बहुत खराब, उसकी चाल चलन ठीक नहीं है, उसके व्यवहार ठीक नहीं, उसकी बोल ठीक नहीं, उसके कर्म ठीक नहीं है। कोई अगर आपने देखा किसी को बहुत बीमार है, तो आप क्या आएंगे, कहेंगे अरे उसके कर्म ऐसे है, कर्म भोग भोग रहा है, ऐसे बोलेंगे। अगर आपको पता है दवाई जी ये दवाई ले लो, नहीं तो इस डॉक्टर के पास जाओ, कुछ तो कहेंगे ना। अगर आपको पता है तो आप दवाई देंगे, ये बीमारी ये दवाई ले लो, ठीक करने सोचेंगे ना। तो इसको कहा शुभ भावना, चलते फिरते बाबा को याद करो। शुभ भावना क्या है, याद क्या है, किसी की चलन कैसे भी हो उसको देखते ही शुभ बाबा ये आपके बच्चे हैं, हाँ इनकी चलन ठीक नहीं, शास्त्रों में भी है अधम ते अधम महापापी है, बहुत खराब है, तो भी शुभ बाबा आपके बच्चे हैं। और एक पत्थर मानना चाहिए नहीं, आपके बच्चे हैं बाबा, आप इस बच्चे को सद्बुद्धि दे दो, आप इस बच्चे को शांति की शक्ति दे दो। ये नंबर वन बाबा ने आज कहा, बच्चे जितनी बाबा को याद करना चाहते हो उतनी याद करो। कितने करना चाहते हो पूछ लो। आज बाबा ने कहा जितनी बाबा को याद करना चाहते हो उतनी याद करो। कितना करना चाहते हो, कितना किया आज, सुना उधर का उधर छोड़ दिया है ना। जैसे भक्ति मार्ग में श्री राम थे, श्री कृष्ण था, ये हुआ सब सुना, और वहां छोड़ करके बहुत अच्छी कहानी थी, छोड़ के आ गए उधर। तब बाबा ने आज कहा वो ये सत्संग नहीं है, ये पढ़ाई है ना। तब पढ़ने के जो पढ़ेंगे तो आप कहेंगे ये राजा क्यों, ये फर्स्ट क्लास क्यों आया, ये गरीब क्यों, ये बीमारी क्यों, इन सब का कारण हाँ पढ़ाई है। जितने आप अपने आप से पूछो हमारे बुद्धि में सारे दिन में क्या रहता है, कौन रहता है। तब बाबा ने कहा निरंतर आज देह का विचार आता है, नहीं ऐसे नहीं, इनको देखते याद आएगा, नहीं आना चाहिए, निकल ही होगा, ये संबंध है, संस्कार है, आदत बनी, इनको देखते विचार आएगा, तुरंत अपने आप को समझाओ। तो कौन समझाएगा, हाँ कौन सी बुद्धि समझाएंगी, कौन सी बुद्धि है वो, कलियुगी बुद्धि समझाएंगी। हाँ अगर उस बुद्धि में आज का ज्ञान याद है ना, उसको बाबा ने कहा दिल में दिलाराम है। दिलाराम आपके दिल में नहीं बैठेगा, बैठेगा दिलाराम ने जो आज ज्ञान दिया है ना, वो ज्ञान जो श्रीमत आपको बुद्धि में याद रहता है, मन में नहीं रहता है, तो मन चंचल है, मन में किसी देखते ही विचार आएगा, इधर उधर के नहीं आना चाहिए, ऐसे नहीं आता है, आदत बनी न चाहते हुए आता है। तो बुद्धि है, बुद्धि का ज्ञान दिया उसमें, सवेरे सवेरे मुरली दिया उसको कि ये याद रखो, दवाई दिया डॉक्टर ने, दवाई दिया बीमारी है, दवाई दिया लेगा कौन, और कोई डॉक्टर देगा, याद दिलाएगा आपको, दर्द होते ही दवाई आपको लेनी है। तो बाबा ज्ञान रूपी दवाई देता है, तो मन चंचल है, मन के अंदर इधर उधर के विचार आएंगे, तो बार बार अगर अपने आप को पढ़ाते हो, उसको कहा कि अपने देह से अलग शरीर के विचार नहीं आएंगे। देहधारी के साथ रहते हुए, देहधारियों के साथ सेवा करते हुए, देह में रहते हुए भी सारे कल्प का यह आधार है और सारे कल्प के लिए पढ़ाई है। और कभी ऐसी पढ़ाई नहीं मिलेगी। मिलेंगी सत्युग में पढ़ेंगे। सत्युग में कोई पढ़ाएगा आपको शरीर को छोड़ो, देह को छोड़ो, भूल जाओ? त्रेता में सुनाएंगे, द्वापर में सुनाएंगे? कोई कलयुग में भी सुनाएगा? नहीं। ये संगम थोड़े दिन, जैसे बच्चों को परीक्षा के समय पर कहते बच्चे पढ़ाई करो, क्योंकि कल पढ़ाई है, सारा साल नहीं कहते। घूमने ले जाएंगे और किधर करेंगे, है ना, सब कुछ करें। पढ़ाई का समय है, क्योंकि बाप चाहता है पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब। समझा? दोस्त किसको समझना है, जो आपको सारा दिन में देखना। हमको कॉलेज पढ़ते समय कहते थे कि दोस्त किसको बनाओ, अगर इधर उधर की कोई बात करता है अपने को संभालो, वो खराब नहीं है, उसका लक्ष्य वही है। हम देखा कॉलेज पढ़ते समय एक लड़का आता था, न्यूज़पेपर बेचता था, दोनों काम करता था, आएगा पीछे पीछे बैठेगा, लाइट बंद करेगा, कोई फूल लेके आएगा बोर्ड पर लगाएगा। हम भी देखते थे, लेकिन किसी को कुछ बोल नहीं सकता, हर एक का अपना लक्ष्य अलग है। हम पढ़ने के लिए आए हैं। अपने जगह पर आप बैठो, क्योंकि इस ब्रह्मांड के अंदर एक व्यवस्था है, क्योंकि मनुष्य और प्राणी में यही अंतर है ना। यहां राजा को बाबा अलग नहीं पढ़ाता है, प्रजा को अलग नहीं पढ़ाता है, दास दासी बनेंगे आप इसलिए आपको अलग नहीं पढ़ाता है, सब साथ में है। तो इस ब्रह्मांड में एक अलग है, मनुष्य और प्राणी में यही अंतर है। प्राणी सिर्फ वर्तमान को देखता है, अब भी मिलना चाहिए, अब भी खाना चाहिए, अब भी का सुख देखता है। अगर एक प्राणी को बुला के दो रोटी दे दो, वो दो रोटी एक रोटी कल के लिए रखेगा? सबका खाओ पियो मौज करो, कल किसने देखा है? कल कहां होंगे? आज जो मिला आज करो, ये प्राणी बुद्धि है। मनुष्य वो मनुष्य आज कुछ मिला एक रुपया कल के लिए रखना चाहिए, कल के लिए सोचता है। अभी बाबा उससे भी हमको और आगे ले जाता है, मनुष्य से भी क्या बनना चाहिए। दुनिया कहती है कि मानवता का धर्म मनुष्य बनो कम से कम, तो बाबा आके क्या कहता है, क्या बनाता है? हाँ, ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर कौन सी पढ़ाई, देवता बनो, दैवी गुण धारण करना है। दैवी गुण धारण कैसे होंगे, अपने आप होंगे, अकेले होंगे? हाँ, कोई गुस्सा करता है, गलत बोलता है, झूठ बोलता है, जोर से बोलता है ना, बहुत कुछ कहोगा, उनके साथ रहते हुए भी, देखते हुए भी, सुनते हुए भी अपने मुख से वर्णन नहीं करना है, संभव है ये? तब कहा कोटों में कोई, कोई में भी कोई, है ना। सभी राजा नहीं बनते, सभी देवता नहीं बनते। स्कूल में कॉलेज में भी देखो कितने बच्चे जाते हैं, नंबर वन एक ही बच्चा आता है, उनको अलग पढ़ाया नहीं जाता है ना। उसको भी लोग बोलेंगे अरे ये किससे बात ही नहीं करता, ये ऐसा है, ये वैसा है। अच्छे रास्ते पर चलने वालों को भी 10 लोग गलत बोलेंगे, है ना। अगर वो सबके साथ खेलता है, पीता है, होटल में जाता है, सिगरेट पीता है, अच्छा है ना। अच्छे रास्ते पर जाने वाले को भी पाव खींचने वाले उसको भी है ना। इसलिए संभालना पड़ता है, कलयुग है तो अपना लक्ष्य रखना। जो बाबा ने लक्ष्य दिया बच्चे, सारे कल्प का आधार है ये, और आपके जीवन के लक्ष्य के अनुसार आपने लक्ष्य रखा। हाँ, ये माता जी ने अपना लक्ष्य अलग रखा, मुझे सेवा करना है सिर्फ, तन भगवान से लगाना है, मन नहीं, धन भी नहीं, मन के अंदर और कुछ चलता रहेगा जो चाहता है, तन मन धन। बाबा ने कहा तीनों वर्षा देने आता हूं मैं, सिर्फ एक नहीं, तन भी चाहिए, मन भी चाहिए, धन भी चाहिए, हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस, तीनों चाहिए ना, कि एक नहीं चाहिए। और कितने जन्मों के लिए चाहिए, 22वें जन्म में बीमारी हो गई तो चलेगा? अभी आपने कहा 21 जन्म बस, 22वें जन्म में गरीब हो गया तो चलेगा? तो फिर आपने कहा 21 जन्म, कितने जन्म चाहिए? तो बोला नहीं, लेट बोला। हाँ, पहले मुख से क्या आया, अंदर क्या भरा हुआ है, वो बाबा कहता है बच्चे गारंटी 21 जन्मों के लिए, लेकिन आपको कब के लिए, कब तक चाहिए? तब सारे कल्प के लिए चाहिए, है ना, सारा कल्प के लिए पढ़ाई है। तो इसके लिए कितना ध्यान देना चाहिए सोच लो। आपको बताओ, हमने देखा हम पढ़ते समय कॉलेज में 50 बच्चे एक ही स्कूल से एक कॉलेज में जाते थे, एक घंटा था बस पर, सारे बच्चे आवाज करते थे, इतना इतना कुछ कर, लेकिन हम ज्ञान में चलते थे। मैं मुरली सवेरे लेकर अपने सीट पर, कोई भी आके नहीं बैठता था, खाली हमारे सीट, मैं मुरली पढ़ते अच्छे अपना अपना पर एक घंटा है मुरली पढ़ते बैठता था, कोई भी मेरे सीट पर नहीं बैठेगा, न हमें कोई कुछ बोलेगा, पूछेगा भी नहीं, वो आवाज कर रहे हैं कुछ कर रहे, और हमें भी पता है उनका अपना धर्म है, हमें भी कोई तकलीफ नहीं। यहां भी ऐसा नहीं समझना, सभी ऐसे बनना चाहिए, ये एक हाथ एक जैसा नहीं, एक मोटी अंगुली है एक। तब बाबा ने कहा किसी को देखो नहीं, किसी को फॉलो नहीं करो, किसको करो, कहा एक बाप दूसरा दिया, बाबा और मम्मा दो सैंपल बताया, सैंपल चाहिए, एक बाप तो निराकार, साकार में किसको फॉलो करे, तो बाबा और मम्मा दो दिखाया, किसको फॉलो करना चाहिए। स्कूल में भी एक मॉनिटर बनाते हैं, है ना, उसको वो मुख्य सब देखता है सबको, किसको देखना चाहिए। अगर आप इधर उधर देखते हैं, ये ऐसा करता है, आजकल यही आप देखा, सब जगह जाओ यही चिंतन, एक दूसरे से मिलेंगे तो क्या बोलेंगे। तब मैंने साक्षी होकर आपको पूछा, आज हम भी देखते हैं, किसी ने भी आज सबने मुरली सुनी, एक ने भी, एक भी हाथ नहीं उठा, एक ने भी आपकी मुरली के पॉइंट किसी को नहीं सुनाया। माता जी ने भी कलकत्ता से इधर तक आई, क्यों आई, सारा दिन में क्या किया, मुंह तो खोला, बोला जरूर, लेकिन एक को भी दान नहीं किया है। सोच लो अपने आप से थोड़े महसूस, क्योंकि ऐसे क्लास करके जाओ कोई फायदा नहीं, थोड़े हमें महसूस होना चाहिए मेरा धर्म कर्म क्या है, और जो मैं हम करता हूं वो आपको बताता हूं। ऐसे नहीं, भाषण एक अलग है ना, एक भाषण अलग है, और बहुत कुछ नहीं कहा बाबा ने, कहा बहुत कुछ करो नहीं, सहज एक एक ही शब्द याद रखो, मुंह खोलो, बोलो, मिलो अलो से। अगर कोई इधर उधर के बात करता है, थोड़ा किनारा आता हूं एक मिनट करके, किनारा कर लो, अपने को बचाओ। उन्होंने सोचा एक कचरे का डब्बा अच्छा है, हाँ इनको सब इसके अंदर डाल दो, क्योंकि उनके पास भी वही है, उनका लक्ष्य वही है, अपने को बचाना है, अपने को तब का स्व परिवर्तन से, हाँ है ना। आप जो कुछ करते हो सेवा, तन से मन से, किसी को भी मुरली सुनाते हो उनके लिए कल्याण के लिए नहीं, अपने कल्याण के लिए। अगर उनको सुनाने से आपकी स्मृति बढ़ गई, आपके अंदर संस्कार बना, उसने सुना नहीं सुना, आपको रिस्पेक्ट दिया नहीं दिया, वो उसका धर्म है। दान आप करो, वो उसका दुरुपयोग करे कुछ करे उसका, आपका धर्म आप निभाओ। संभव है कि कठिन है? कर सकते हो कि सिर्फ स्थूल सेवा करना चाहिए, थोड़ों का लक्ष्य है, दुनिया सारी दुनिया सेवा करती है, कितने लोगों को आप देखो, हमने कहा पंजाब में भी जाओ, गुरुद्वारे में चप्पल ठीक करके रखते हैं, पॉलिश करते हैं, खाना खिलाते हैं, सब कुछ सेवा करते हैं। सेवा एक ही ने वो कहा शरीर की सेवा है ना, यहां बाबा ने एक शब्द ऐड किया रूहानी सेवा, सारे कल्प का आधार। भाग पद्मा पदम भाग्यशाली बनना चाहते हो, रूहानी सेवा का, सिर्फ सेवा दुनिया करती है। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में किसकी सेवा कर रहे हो आप, किसके श्रीमत के अनुसार सेवा करते हो, उसका भी एक शब्द जोड़ दिया, श्रीमत के अनुसार, अपने मन मत के अनुसार नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है मेरे अनुसार नहीं, श्रीमत के अनुसार, रूहानी सेवा। माताजी भी घर में खाना बना के खिलाती है पति को, बच्चों को, वो भी सेवा कर रही है ना, यहां भी सेवा करते हो, अंतर क्या है, यहां सेवा करते हैं बाबा को भोग लगने वाला है, बाबा के बच्चों के लिए, बाबा के लिए बना रहे हो, अंतर है। वहां बच्चों को ठीक लग ये चाहिए, पति को ये चाहिए, किसी ने किसी के नाम से बन रहा है ना, घर में और यहां में सेवा में अंतर देख लो, तब कहा ये भाग्य विधाता का घर है, भाग्य बना। अगर कुछ भी करते समय ये है बाबा के लिए भोग बन रहा है, आज बाबा की सेवा कर रहा हूं। तो बाबा आया तो बाबा ने जो कहा वो आया, तब बाबा ने इतना सिंपल है, मोबाइल भी देख लो, नहीं देखना से नहीं, उसके अंदर अच्छी बातें भी आती है ना। खाने के समय पर देख लो, सब्जी में कुछ मिर्ची आता है और कुछ आता है, सब खाएंगे नहीं, जो अच्छी नहीं निकाल के रखते है ना। तो यहां भी अपनी धारणा अपने के लिए, दुनिया बहुत कुछ देती है लेकिन मोबाइल में भी अच्छी चीज है, मुरली है, कोई अच्छे स्लोगन है, अच्छी बात है वो ले लो, बाकी गलत है निकालो। ये अपनी धारणा है, ऐसा नहीं कह सकते दुनिया खराब है छोड़ के कहां जाएगी आप, ऐसा नहीं कहते मोबाइल नहीं यूज करना चाहिए, करो, कोई चीज खराब नहीं है, लेकिन अपनी धारणा के अनुसार। अगर मेरे अंदर पहले से गलत लक्ष्य है, मोबाइल में भी आएगा, व्हाट्सएप पर भी सब आता है, तो सब देखते रहेंगे, अपनी ही दुर्गति करते हैं, इससे किसी को नुकसान नहीं है। सदगति दुर्गति अपने हाथ में है, मंजूर? तकलीफ है कोई? तो अपने जीवन का लक्ष्य रखो, ऐसे नहीं ये माताजी ऐसी करती है, हाँ वो करेंगी, मुझे क्या करना है, अपने आप को देखो, अपने को सुधारना है, अपने जीवन का लक्ष्य है, नहीं तो कोई एक दूसरों को नहीं। ठीक है, अब बाबा को याद करो। ओम शांति।